पृष्ठ संख्या 109, त्रिलोचन, जीवन की लय में मुक्ति का राग। सुना है इस साल त्रिलोचन शास्त्री 70 वर्ष के हो गए हैं। कहना कठिन है कि यह सच है या अफवाह। अभी उनका उठा हुआ सिर, चौड़ी छाती, लंबी बाहें, सधे कदम, तेजी से चलना देखकर कौन कह सकता है कि वह 70 के हैं। कहीं यह भी उनके बारे में फैली अनेक किंवदंतियों की तरह एक किंवदंती तो नहीं है? नागार्जुन कहते हैं कि त्रिलोचन किंवदंती पुरुष हैं। निराला के बाद सबसे अधिक किस्से त्रिलोचन के बारे में कहे सुने गए हैं। उनको किंवदंती पुरुष बनाने में सबसे अधिक योगदान उनके मित्रों का है, लेकिन कुछ सहयोग उनका भी है। वे अपने बारे में किस्से सुनकर या तो चुप रहते हैं या मुस्कुरा देते हैं, जैसा कि उन किस्सों से उनका कोई संबंध ही ना हो। अपने बारे में ऐसी तटस्थता, लेकिन दूसरों की गहरी चिंता उनकी विशेषता है। यह बाहर से साधारण दिखने वाले उनके व्यक्तित्व की आंतरिक असाधारणता का प्रमाण है। हम आज जैसे समाज में जी रहे हैं, उसमें शब्दों का अर्थ बिगड़ते देर नहीं लगती। प्रायः समझा जाता है कि शब्दों का अर्थ बदलने और बिगाड़ने का सबसे बड़ा कारखाना राजनीति है, लेकिन साहित्य भी उससे पीछे नहीं है। राजनीति की तरह साहित्य में भी पाखंड के प्रसार से शब्दों का अर्थ भ्रष्ट करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। कई दूसरे शब्दों की तरह संघर्ष भी इस प्रक्रिया का शिकार हुआ है। जिसे देखिए वही साहित्यकार जीवन और साहित्य में संघर्ष कर रहा है। फिर भी कुछ लेखकों ने अपने जीवन और रचनाकर्म में से संघर्ष के अर्थ की रक्षा की है। त्रिलोचन उनमें सबसे आगे हैं। दूसरों के लिए संघर्ष विशेषण है, लेकिन त्रिलोचन की वह संज्ञा है। सुविधा जी भी कवियों के शब्द अघाए आदमी की डकार होते हैं, लेकिन त्रिलोचन की कविता में शब्द आँखों से टपकने वाली लहू की बूंद हैं। पिछले 50 वर्षों से त्रिलोचन की साहित्य साधना अविराम चल रही है। उनकी गद्य रचनाएं अभी पत्रिकाओं के पन्नों में बिखरी पड़ी हैं। कविताएं धीरे धीरे प्रकाश में आ रही हैं। उनका पहला संग्रह 1945 में छपा, दूसरा 1956 में और तीसरा 1957 में। 1957 से 80 के बीच उनका कोई संग्रह नहीं आया, लेकिन 80 से 87 के बीच 6-7 संग्रह निकल चुके हैं। 60 से 80 के बीच वर्षों का अंतराल और 80 के बाद पृष्ठ संख्या 110, उनकी कविताओं के प्रकाश की एक लहर। इससे स्वाधीनता के बाद की हिंदी कविता का इतिहास और उससे त्रिलोचन के विशेष संबंध की स्थिति स्पष्ट होती है। कमोबेश यही स्थिति मुक्तिबोध, नागार्जुन, शमशेर और केदारनाथ अग्रवाल के साथ भी है। मुक्तिबोध के जीवन में उनका कोई काव्य संग्रह नहीं छपा। मृत्यु के बाद उनकी रचनावली जरूर छप गई है। नागार्जुन 1962 में प्यासी पथराई आँखें लेकर आए तो 1975 में तालाब की मछलियाँ देख सके। 1959 में शमशेर की कुछ कविताएं छपी और 61 में कुछ और कविताएं। फिर 1980 के बाद कई संग्रह निकले हैं। 60 से 80 के बीच केदारनाथ अग्रवाल के दूसरों से अधिक काव्य संग्रह छपे हैं, लेकिन 80 के बाद उनके भी अनेक संग्रह आए हैं। ये सभी कवि 1936 से या कुछ पहले से भी लगातार कविताएं लिख रहे हैं। जब इनके संग्रह नहीं आ रहे थे, तब भी वह कविताएं लिख रहे थे। 80 के बाद के संग्रहों में उस काल की उनकी कविताएं हैं। 1975 के बाद प्रगतिशील धारा की कविता में पाठकों की दिलचस्पी बढ़ने के पीछे 1970 के आसपास से आरंभ होने वाले जन आंदोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जन आंदोलनों ने साहित्य और समाज के संबंध के बारे में नए ढंग से सोचने की प्रेरणा दी। साहित्य चेतना बदली तो आधुनिकतावादी कविता निरर्थक लगने लगी। नई रचनाशीलता मध्यवर्गीय जीवन की सीमा से निकलकर व्यापक जनजीवन के यथार्थ और अनुभवों से जुड़ने की आकांक्षा लेकर आगे बढ़ी तो वैसी रचना की परंपरा की खोज शुरू हुई। प्रगतिशील कविता की परंपरा जीवंत रूप में मौजूद थी। जरूरत थी उसको पहचानने और अपनाने की। इसी प्रक्रिया से प्रगतिशील कविता की धारा एक बार फिर हिंदी कविता की मुख्य धारा बनी। आज जबकि इतिहास प्रक्रिया में जनधारा ने प्रगतिशील काव्य धारा की प्रासंगिकता स्थापित कर दी है, तब कुछ पुराने आलोचक उसकी व्याख्या करके खुद को प्रासंगिक बनाना चाहते हैं। प्रगतिशील काव्यधारा में जितनी व्यापकता है उतनी विविधता भी है। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध, शमशेर और त्रिलोचन की रचनाशीलता को समग्रता में देखने पर उसकी व्यापकता और विविधता का बोध होता है। इन कवियों में रचनात्मक उद्देश्य की एकता है, लेकिन प्रत्येक की काव्य रचना का निजी रूप रंग है। नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल की रचनाशीलता में काफ़ी समानता है, फिर भी दोनों में अंतर है। आज़ादी के पहले के जन आंदोलनों की प्रतिध्वन केदार की कविताओं में है, लेकिन आज़ादी के बाद जनजीवन और जन आंदोलनों की धड़कन नागार्जुन की कविताओं में मिलती है। नागार्जुन के व्यंग्य की धार अप्रतिम है। मुक्तिबोध की गहन विचारशीलता और शमशेर की कला से प्रगतिशील धारा समृद्ध हुई है। किसान जीवन की लय में मानव मुक्ति का सधा हुआ राग त्रिलोचन की पृष्ठ संख्या 111 कविताओं में है। ये पांचों कवि वैसे ही परस्पर पूरक हैं, विरोधी नहीं, जैसे भक्ति काल के पांचों महाकवि। कुछ आलोचकों की संकुचित दृष्टि में प्रगतिशील धारा की यह व्यापकता और विविधता अट नहीं पाती। वे मूल्यांकन के नाम पर छटनी करते हैं। कविता में प्रगतिशीलता को केवल राजनीति तक और राजनीति को आंदोलन तक सीमित समझने वाली आलोचना दृष्टि जनजीवन की वास्तविकता और आकांक्षा के अन्य रूपों की अभिव्यक्ति को खारिज करती चलती है। यही नहीं, वह दृष्टि इंद्रिय बोध और भावों को छूने वाली कविता को यथार्थवादी मानती है, लेकिन पाठकों के विवेक को प्रभावित करने वाली कविता को यथार्थवाद के बाहर रखती है। प्रगतिशील धारा के प्रभाव को सीमित रखने का कुछ श्रेय ऐसे आलोचकों को भी देना चाहिए। हिंदी में राजनीतिक कविता का एक छोर है राम की शक्ति पूजा और दूसरे छोर पर शैलेंद्र का यह गीत एक जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। इन दोनों के बीच राजनीतिक कविता की जमीन बहुत व्यापक है। जिनकी नज़र केवल छोरों पर रहती है वह बीच की व्यापकता नहीं देख पाते। पिछले कुछ वर्षों में साहित्य चेतना के बदलने के साथ त्रिलोचन की कविता की लोकप्रियता बढ़ी है, लेकिन नए पुराने आचार्यगण उन्हें अब भी कवि मानने को तैयार नहीं है, ना आधुनिकतावादी आचार्य और ना प्रगतिवादी। 1986 से 87 में कुछ आगे पीछे इतिहास और आलोचना की दो पुस्तकें आई हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी की हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास और रामविलास शर्मा की नई कविता और अस्तित्ववाद का नया संस्करण। दोनों में कहीं त्रिलोचन नहीं है, वह रामस्वरूप चतुर्वेदी की संवेदना के बाहर हैं और रामविलास शर्मा के यथार्थवाद से बहुत दूर। दोनों पुस्तकों में एक और समानता है, केदारनाथ अग्रवाल दोनों को पसंद हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी के लिए प्रगतिवादी काव्य की अकेली उपलब्धि और रामविलास शर्मा की दृष्टि में क्रांतिकारी यथार्थवाद के अग्रदूत। नई कविता और अस्तित्ववाद के पहले संस्करण में केदारनाथ अग्रवाल की कोई खास चर्चा न थी। जहाँ थोड़ी सी चर्चा थी वहीं त्रिलोचन का भी उल्लेख था। 1986 में इतिहास दृष्टि बदली तो केदारनाथ अग्रवाल क्रांतिकारी यथार्थवाद के कवि हो गए और त्रिलोचन इतिहास से बहिष्कृत। त्रिलोचन के बारे में आधुनिकतावाद और प्रगतिवाद के इन दो आचार्यों को एकमत देखकर कुछ लोग चकित हैं, लेकिन मुझे इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं लगती। त्रिलोचन की तरह जो रचनाकार आचार्यों के बनाए रास्ते को छोड़कर चलता है या अपनी राह बनाता है, उसके साथ आचार्यगण ऐसा ही व्यवहार करते हैं। त्रिलोचन की कविता का व्यक्तित्व ऐसा है कि आधुनिकतावादियों को पसंद नहीं आ सकता। उन्होंने आज तक अपनी कविता को लगातार आधुनिकतावादी फैशनों और प्रवृत्तियों से बचाया है। नई कविता के व्यापक प्रभाव के दौर में भी वे पृष्ठ संख्या 112 दृढ़तापूर्वक ब्रैकेट में कुछ लोगों के अनुसार हठपूर्वक ब्रैकेट बंद अपनी कविता के स्वतंत्र व्यक्तित्व की रक्षा करते रहे, जबकि कई प्रगतिशील कवि नई कविता के करीब जा रहे थे। यही कारण है कि त्रिलोचन की कविता में नई कविता का कहीं कोई प्रभाव नहीं है, व्यक्तिवाद, रहस्यवाद आदि की छाया नहीं है। उनकी कविता नई कविता के समानांतर उसके विरोध में खड़ी दिखाई देती है। नई कविता का आधुनिकतावाद अनुभव के स्तर पर शहरी मध्यवर्ग की जिंदगी से जुड़ा था और विचारों में पश्चिम के समानधर्मा कवियों आलोचकों का अनुगामी था। त्रिलोचन की कविता की दुनिया एकदम दूसरी है। उसमें गांव की जिंदगी की वास्तविकताएं और आकांक्षाएं हैं, जनजीवन के चित्र और गांव की बोली ठोली, लाग लपेट, टेक, भाषा, मुहावरा, इंगित आदि हैं। किसान जीवन और जातीय मन का यह काव्य नई कविता के आधुनिकतावाद का प्रतिपक्षी और प्रतिरोधी है। नई कविता के आधुनिकतावादी वातावरण में त्रिलोचन की कविता महानगर में बसे बचे गांव की तरह है। यह आपकी मानसिकता पर निर्भर है कि उसे आप पिछड़ेपन की निशानी माने या रेगिस्तान में नखलिस्तान। त्रिलोचन का यथार्थवाद दूसरे कवियों के यथार्थवाद से कुछ अलग है। उसमें न कहीं भावुकता है, न झूठा आशावाद, न काल्पनिक संघर्षों के अमूर्त चित्र हैं, न मारो मारो काटो काटो की ललकार है। वहाँ जनशक्ति में आस्था है, संघर्ष के लिए आह्वान है, मुक्ति आंदोलन के गीत भी हैं, लेकिन यह चेतावनी है कि सोच समझकर चलना होगा। उपदेश और आह्वान धरती की कविताओं में अधिक है, बाद के संग्रहों में कम। उनकी कविता का मुख्य स्वर यह है, भाव उन्हीं का सबका है जो थे अभाव में, पर अभाव से दबे नहीं जागे स्वभाव में। वह किसान जीवन के वास्तविक सुख दुख, आशा निराशा और संघर्षों की कविता लिखते हैं, काल्पनिक उल्लास और विजय की नहीं। जो लोग जनजीवन की कविता में केवल आशा और उल्लास देखना चाहते हैं, उनको लक्ष्य करके त्रिलोचन ने लिखा है, अगर न हो हरियाली कहाँ दिखा सकता हूँ फिर आँखों पर मेरी चश्मा हरा नहीं है। यह नवीन एयारी मुझे पसंद नहीं है, जो इसकी तैयारी करते हों वह करें, अगर कोठरी अंधेरी है तो उसे अंधेरी समझने कहने का मुझको है अधिकार।